كفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد وبارك وسلم. موجودہ دور میں مسلمانوں کی پستی کے اسباب اور ان کے زوال کی وجوہات پر روزانہ تقریریں بھی ہوتی ہے اور مفکرین فکر انگیز مضامین لکھتے بھی ہیں اور کہتے بھی ہیں. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد سے امت مختلف احوال سے دوچار ہے. اور خیر القرون کا زمانہ گزرتے گزرتے یہ احوال بھیانک روپ اختیار کر چکے ہیں. موجودہ دور میں لوگوں نے فیصلے کر دیے ہیں کہ اب ہماری بچنے کی اور ترقی کی کوئی شکل نہیں، سب راستے بند. اور غالباً اس کی وجہ یہ ہے کہ اسباب کے نقطۂ نظر سے اور دنیا کے سیاسی حالات کو دیکھتے ہوئے تو یہ بات درست ہے، لیکن کتاب و سنت کے حوالے سے اگر ہم گفتگو کریں تو یہ بات غلط ہے. ہم اپنے مسائل کا حل ایسی جگہ تلاش کر رہے ہیں جہاں مسائل پیدا ہوتے ہیں. مسائل جہاں حل ہوتے ہیں وہاں تو ہم جاتے نہیں، اور مسائل کے انبار جہاں لگے ہوئے ہیں وہاں ہم تلاش کرتے ہیں حل. ایک آدمی کیچڑ سے نکلنے کے لیے کیچڑ میں کھڑا ہو اور کیچڑ سے نکلنے کے حل کے طور پر وہ موومنٹ اور نقل و حرکت کرے، تو اس نقل و حرکت کے نتیجے میں وہ زیادہ اندر جائے گا اور باہر کم آئے گا. مولانا روم نے ایک مثال بیان کی، شیر کو جب شکار کرنا ہوتا ہے تو رات کو وہ ایک چنگاڑ زور کی لگاتا ہے، اس کی چنگاڑ کو سن کر جنگل کے جتنے درندے ہیں وہ اپنی جان بچانے کے لیے اور شیر کا لقمہ تر بننے سے بچنے کے لیے دوڑنا شروع کرتے ہیں، اپنا کوئی حفاظتی حصار ہو اس طرف جاتے ہیں. شیر ایک چیخ لگانے کے بعد زمین پر لیٹ جاتا ہے، کان اپنے لگا دیتا ہے زمین سے. اللہ نے اس کی سماعت میں یہ طاقت رکھی ہے کہ کئی کلومیٹر دور دوڑنے والے جانور کا اندازہ لگاتا ہے کہ وہ کس طرف دوڑ رہا ہے اور جا کدھر رہا ہے. تعجب نہیں ہونا چاہیے اس بات پر, جس بنا پر کہ جس کی بینائی اللہ دے دیتے ہیں وہ بغیر راہبروں کے پورے عالم میں گھومتا ہے اور آنکھوں والے بیچارے ٹکرے کھاتے ہیں اور تعجب کرتے ہیں کہ بغیر آنکھوں میں یہ کیسے چکر کاٹتا ہے. یہ اللہ کی طرف سے یہ چیز اللہ لیتے ہیں تو کئی نعمتیں دیتے ہیں. ایک غریب سے مال لے لیتے ہیں لیکن اس کو سکون قلب اتنا دیتے ہیں جو مالداروں کو حویلیوں میں اور بنگلوں میں حاصل نہیں ہوتا. اب شیر لیٹا رہتا ہے اطمینان سے, اٹھتا نہیں, اپنے شکار کے پیچھے نہیں دوڑتا, کیونکہ اس کی سماعت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ جانور جان بچانے کے لیے اسی کی طرف دوڑ رہے ہیں. جہاں ان کی جان جانا ہے وہیں دوڑ رہے ہیں, اور دوڑ یہ ہے کہ ہم جان بچانے کے لیے دوڑ رہے ہیں. خلاصہ یہ کہ شیر کے پاس آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں اور شیر ان کو لقمہ بنا لیتا ہے, ان کی زندگی ختم ہو جاتی ہے. کو ڈرایا جاتا ہے مسائل مسائل حالات, دوڑو تو دوڑتے ہیں لیکن دوڑتے وہاں ہیں جہاں حالات اور زیادہ ہیں. حضرت مولانا عمر صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ دنیا جن چیزوں کو تھوک چکی ہے اس کو ہم چاٹ کر سمجھتے ہیں کہ ترقی کریں. دوا ترقی کی میں نے دیکھی بسر ادب گئی گزارش, مرض ترقی کرے گا اس سے مریض اچھا نہ ہو سکے گا. مریض عشق پر رحمت خدا کی اور مرض بڑھتا گیا جوں جوں دوا کی. ہم لوگ قرآن کریم کی طرف نظر نہیں کرتے حالانکہ قیامت تک کے ہمارے مسائل کا حق اس کتاب میں ہے. فرمایا ولا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین. جو ضرورتیں امت کی رہیں گی حالات میں رہنمائی کی وہ سب قرآن کریم نے کی اور سرکار نے اس کی عملی ترجمانی کی. میں کہا کرتا ہوں حدیث کی کتابیں روزنامچے ہیں حضور کے, صبح سے رات تک کیا کرنا ہے حدیث کی روشنی میں آپ کو مل جائے گا. اٹھنا کب ہے, اٹھ کر کیا کرنا ہے, کر کے کیا کرنا ہے, سب بتایا ہے. رات تک کا پروگرام حدیث کی روشنی میں طے ہو سکتا ہے, پھر ضرورت کیا ہے اور چیزوں کی طرف جانے کی. اخباروں میں کیا تھا, اخبار والے کی اور جرنلسٹ کی نظر 100 سال پہ ہوگی. اللہ نے انسان کو بنایا قیامت تک کے اوپر نظر ہے اللہ کی. ہمارے مسائل کا حل قیامت تک کا اللہ کی کتاب میں مل سکتا ہے, دنیا کی کتاب میں نہیں مل سکتا. ہماری زندگی بننے کے بگڑنے کے فیصلے اللہ کے ہاتھ میں, لوگوں کے ہاتھ میں نہیں ہے, سیاسی پارٹیوں کے ہاتھ میں نہیں ہے, لیڈروں کے ہاتھ میں نہیں ہے, ملکوں کے ہاتھ میں نہیں ہے, اللہ کے ہاتھ. اور قرآن کوئی لمبا آرٹیکل بیان نہیں کرتا. میں کہا کرتا ہوں جو لوگ گھنٹوں میں مضمون بیان کرتے ہوں گے قرآن کی آدھی آیت میں وہ مسئلہ حل ہو جاتا ہے. यूनानी दवा में मुरक्कबात और सुफूफ और गोलियां पेट उसी से भर जाएगी दवा देते हैं। होम्योपैथी वाले छोटी सी गोली देते हैं। ये पुराने कई वाला इलाज ऐसा है। अब हमारे अंदर इत्तेहाद पैदा हो, यूनिटी पैदा हो, कितने दुनिया में कितनी मेहनत कर रहे लोग, लेकिन इत्तेहाद नहीं आता। बहुत बड़ा फाउंडेशन ऑफ यूनाइट, यूनिटी का फाउंडेशन बना, इतना बड़ा बोर्ड लगाया। 2 महीने के बाद मैंने पूछा, मैं फाउंडेशन के क्या हुआ, बोर्ड नजर नहीं आता। जब फाउंडेशन वाले जो है उनका फाउंडेशन गीला हो गया, बोर्ड उतर गया। मैंने कहा हुआ क्या, कहा वो 2 लाख रुपए थे उसके अंदर डिस्प्यूट हो गए। यूनिटी के लिए 2 लाख रुपए जमा किए थे, उसी में डिस्प्यूट हो गए। मैंने कहा 20 लाख आएंगे तो अभी कितने डिस्प्यूट में कितनी पार्टी के 4 भाग हो गए। 20 लाख आएंगे तो दूसरे 8 भाग और हो जाएंगे। मेरे मदरसे में छोटी सी जमात होती, 50 होंगे के 100 होंगे, 5 पार्टी होती इसमें, वो अलग ये अलग ये फलां, छोटी छोटी बात। हर एक का दिमाग अलग है, जितने दिमाग इतनी पार्टी है। अपने सबके दिमाग को जमा करके कुरान पे लगा दो तो आधी आयत में मसला कुरान हल करेगा। कुरान करीम कोई लंबा आर्टिकल बयान ही नहीं करता, आधी आयत होती है मुकम्मल कामयाबी का पैगाम होता है। मुल्क वाले और अलाते वाले हर वक्त जो है कौम को धोखा देने के लिए 10 मुद्दा नो कार्यक्रम, 5 मुद्दा नो कार्यक्रम, बस मुद्दों पे मुद्दे होते हैं और वो मुद्दे में हालात आते हैं तो दूसरा 10 मुद्दों का और कार्यक्रम के लिए टीम तैयार होती है। अब जलजला किसी जगह आया, तहकीक के लिए कमीशन आया, कमीशन को कुछ करोड़ रुपए दिए गए, 2 साल के बाद वो कमीशन के ऊपर दूसरा कमीशन तहकीक के लिए आया कि 10 करोड़ क्या खर्च किए। ये कमीशन पहले कमीशन वाले के साथ मिल गया तो वो कमीशन पे एक और कमीशन कायम हुआ। एक कागज सेक्रेटरियट से वजीर आजम के निकलता है तो वजीर आला के दफ्तर तक पहुंचते हुए फाइल में तब्दील हो जाता है। इसमें उसका हुक्म क्या है वो तो समझ में ही नहीं आता। जैसे यहाँ दीवानी अदालतों के फैसले में फैसला क्या है ये ढूंढना मुश्किल है, पता ही नहीं चलता। 100 पेज का फैसला है, कुरान आधी आयत में फैसला करता है, लेकिन अल्लाह की किताब पर भरोसा नहीं है उनको। इत्तेहाद चाहिए तो कुरान करीम ने आधी आयत में फलसफा बयान किया, तो जितने फलसफे हैं सबको बलाए दाम रख दो, अल्लाह की रस्सी को थामो और परचम कलमे का जो है उसके नीचे जमा हो जाओ। जो जमा हुए थे अल्लाह ने उनको यूनाइट कर दिया, अमली तौर पर तुम देख सकते हो इतना यूनाइट किया कि दुनिया में ऐसी यूनिटी की कोई मिसाल पेश नहीं कर सकती। अब देखिए क्या कहते हैं, रुकू शुरू फरमाया है तो तकवा की दावत के साथ, तकवा की नसीहत के साथ, कि तकवा जिंदगी में आएगा तो इत्तेहाद भी आएगा, और तकवा आएगा तो ये जितनी जिल्लतें हैं सब खत्म हो जाएगी, और तकवा आएगा तो जिंदगी राह रास्त पर लग जाएगी। जितनी मुसीबतें हैं वो सब हमारी क्रिएट की हुई हैं, जितना गुनाहों में आगे बढ़ रहे हैं उतनी परेशानियां और हालात हमको सता रहे हैं। गुनाहों वाली जिंदगी को छोड़ो, तकवा वाली जिंदगी की तरफ आ जाओ, खुद ब खुद आपस में इत्तेहाद और मोहब्बत आती चली जाएगी, क्योंकि तकवा सिखाएगा कुरान और जो कुरान के ऊपर अमल करे अल्लाह उनको मुत्तहिद करता है। बताओ इससे आसान क्या फलसफा हो सकता है? आप में से कोई इस फलसफे पे एतराज नहीं कर सकता, कोई भी नहीं कर सकता। अल्लाह फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाहा हक़्क़ा तुक़ातिही वला तमूतुन्ना इल्ला वा अन्तुम मुस्लिमून। तय कर लो अपनी ईमानी जिंदगी में कि मेरी मौत के इस मेहनत के साथ होनी चाहिए कि दुनिया से जाऊं तो मेरी जबान पर कलमा हो और मेरे दिल में अल्लाह का यकीन हो, ईमान हो। इलाही रहे वक्त मरने के कायम, बतस्दीद दिल लब पे करार तेरा। अगर दिल में तस्दीक हो, लब पे अल्लाह की तौहीद का इकरार हो, तो फिर इसके मुसलमान होकर मरने में खलजान क्या है? मरने तक का फलसफा दे दिया, मरने तक की कामयाबी दे दी, कलमे पर गया, इससे बड़ा कामयाबी कोई नहीं है। अब आगे एक बात बयान कर, जब हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा तशरीफ लाए, अंसार और मुहाजिरीन में भी भाईचारा करवाया। अंसार में दो बड़े गिरोह थे, औस और खजरत, दोनों बड़े कबीले, और दोनों बड़े कबीलों में बड़ाई के लिए हमेशा लड़ाई। वो कबीला यूं कहे कि हम बड़े, वो कबीला यूं कहे कि हम बड़े। दुनिया में जितने झगड़े होते हैं सब बड़ाइयों के लिए होते हैं। कौन अल्लाह के दीन की खातिर लड़ाई करता है? क्या किसी को देखा कि उसके साथ मार मारी हो रही है कि तू नमाज पढ़ने नहीं आता? ऐसी कोई लड़ाई आपको नहीं मिलेगी। किसी का कर्जा दूसरा आदमी नहीं चुकाता, उसके साथ कोई हम जाकर लड़ाई करते हैं? हम यही कहते हैं कि अल्लाह तो मेरे को पूछे लग, मसला वहां से खत्म कर देते हैं, कुड़ी का बना के रख, तू जाने वो जाने, ये तो दर्द चाहिए, तब जाकर के आदमी दूसरे के मामले के अंदर पड़े। औस और खजरत में इतनी मोहब्बत, इतनी मोहब्बत, मुनाफिकों की आंखों में खून आ गया था, क्योंकि यहूद जो हैं वो पूरी दुनिया को लड़ाते हैं। अंग्रेजों के मिजाज में लड़ाना है, खुद नहीं लड़ते। हजरत मदनी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि समंदर में दो मछलियां अगर लड़ रही हो तो मैं ये समझता हूं कि किसी अंग्रेज ने साजिश की होगी, तब ये लड़ रही है। ये मिजाज है। तो औस और हजरत इतने आपस में मोहब्बत से रहेंगे तो हमारी तो रोटियां ही पकती है इनके झगड़ों पर, इसका क्या होगा? और हमारा काम चले उसके लिए यही करना पड़ेगा कि इनको डिवाइड करो, इनको लड़ाओ। अब पूरी दुनिया जो भी मेहनत करती होगी, मेहनत यह है कि इनको आपस में फिरकों में लड़ा के रखो, ताकि ये लोग कहीं कुरान पे ना जाए, ये लोग सुन्नतों पे ना जाए। पूरी मिल्लत अगर ये दो चीजों के ऊपर जमा होगी तो झगड़ा क्या करेगा, खत्म हो जाएगा, होने ही नहीं देते। हर रोज नया शोशा छोड़ते हैं, यह शोशा मुख्तलिफ शक्लों में आता है, कभी कोट पैंट की शक्ल में आता है, कभी मुख्तलिफ नामों की शक्ल में आता है, कभी मुख्तलिफ सीढ़ियों और मुख्तलिफ जो है कसेट्स की शक्ल में आता है, कभी मुख्तलिफ उसूलों की शक्ल में आता है। फितने मुसलमानों को हमेशा घेरे रहते हैं। वजह यह है कि असल चीज से वो हट गए। उन्होंने देखा ये तो औस और खजरत इतनी आपस में मोहब्बत, कैसे मुंह से मुंह मिलाकर आपस में बात कर रहे हैं, मिल मिल के खाने खा रहे हैं, तो ये लोगों ना पेट के अंदर तेल रेड़ा ही, गुजराती में कहते हैं, यानी वो बेचैन हो गए। क्यों बेचैन हुए? अब इनको डिवाइड कैसे करना? इंसान के अंदर नफ्स भी है, तो उनमें से एक आदमी खैरखा बन के आया, अलग सलेक करके बैठ गया, और बैठने के बाद उसने बात शुरू की। आप लोग तो माशाल्लाह बहुत मिलजुल के रहते हैं, अल्लाह ने अजीब आपको मोहब्बतें दी है, अल्लाह का शुक्र है, सरकार की तालीमात का ये नतीजा है, माशाल्लाह बहुत अच्छा। हम लोग भी ऐसा चाहते हैं, आप लोग मिलकर लेकिन ओस वालों को कहा कि वो एक दिन वो याद है तुम लोगों ने लोग को मारने के लिए लिए थे डंडे लेके तुम दौड़े थे, ये लोग कैसे एकदम बाहर निकले और कैसा तुम्हारे साथ मुकाबला किया, तुम्हारे दो आदमी मार डाले थे, याद है? अब वो पुरानी बात याद है। हाँ, वो ऐसा हुआ था, है ना। बात आगे बढ़ गई, वो दो जो ओस और हजरत के कबीले मिलके बैठे हुए थे उनमें अचानक तलवारें निकल आई। रेशा दवानी कैसी होती है, साजिश किसको कहते हैं, इसको कहते हैं अच्छे खासे मिले हुए लोगों के बीच में दो पुरानी बातों को याद दिलाकर फूट डाली। एक मतलब रंदेल में बहुत बड़ा झगड़ा हुआ, मामला हजरत मुफ्ती लाजपुरी साहब रहमतुल्लाह अलैह के पास आया तो उनका काम यह था, पहले मेरे वाजिद साहब को बुलाते थे, वहां अजमेरी साहब को बुलाओ, हजरत इनके सामने जरा तकरीर कीजिए, इन दोनों को मिलाना है। मेरे वालिद साहब ने कहा कि देखो आप दोनों यहाँ बुजुर्गों के पास क्यों आए, पर हम झगड़ा खत्म करना चाहते हैं। पर इन लोगों ने पहले यूं किया था, फिर उन लोगों ने यूं किया था, उन्होंने कहा उससे पहले इन लोगों ने यूं किया था, उन्होंने कहा उससे भी पहले इन्होंने यूं किया था। तो मेरे वालिद साहब ने कहा झगड़ा खत्म करने के लिए पहला कायदा यह है कि आपने भूतकाल यानी माजी को भुला दो, उधर क्या हुआ था इसको भूलोगे तो आपस में मुस्तकबिल के अंदर मिलकर रह सकते हैं। इसने यूं किया उसने यूं किया तो झगड़ा बढ़ाने की मेहनत कर रहे हैं आप, झगड़ा खत्म करने की मेहनत नहीं कर रहे। दोनों तरफ से तलवारें निकल आई और कोई आदमी दौड़ा कि सरकार वो कामयाब हो गए मुनाफिर, ये दोनों के दरमियान फूट की दीवार खड़ी कर दी है, इख्तलाफ की खलीज बढ़ गई है, दौड़िए सरकार जल्दी। दरबार रिसालत से कमली डाली कंधे पर और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो गिरोहों की तरफ दौड़ पड़े। अल्लाह के बंदो क्या कर रहे हो, ये तलवारें आपस में, ये तो इस्लाम से पहले की बात है कि तुम इस तरह से लड़ते थे और झगड़ते थे और तुम्हारे कबीले खत्म हो गए, तुम्हारे बच्चे खत्म हो गए, तुम्हारे बड़े खत्म हो गए, तुम्हारे सरदार खत्म हो गए, और अब जो है लड़ने के जरिए तुम दोबारा क्या करना चाहते हो, मेरी मेहनतों पर, इस्लाम की मेहनतों पर, कुरान के एक जत्थे में जमा करने की मेहनत पर पानी फिराना चाहते हो। तलवारों को रखो अपने म्यान और पर्तनों में और मैं जो कहता हूं उस पर एक बार फिर जमा हो जाओ, जिसने तुम्हें पहले जमा किया था वही तुम्हें दोबारा जमा करेगा। वो फलसफा क्या है, कोई लंबा फलसफा। सरकार ने पूछा अच्छा ये बताओ, ये जरा सा किसी ने कहा तुमने तलवारें निकाल ली, मुझे ये बताओ कि तुमने मेरे साथ जो मुआहदा किया और मैंने तुमको लाकर के एक किया तो किस चीज पर एक किया, फरमा अल्लाह की किताब पर एक किया, एक अल्लाह की तौहीद पर हमें एक किया, आपकी रिसालत पर एक किया, एक कुरान करीम पर एक किया, हरम पाक भी अल्लाह भी कुरान भी एक, क्या बड़ी बात थी होते जो मुसलमान भी एक। बस तो फिर जो है आधा आयत का खुलासा सरकार ने बयान किया, فَرْمَيَ وَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ قرآن کریم کی تعلیمات سے لگے رہو، گھر میں قرآن کریم پڑھتے بھی رہو اور قرآن نے جو ضابطے دیے ہیں وہ ضابطوں پر عمل کرنا اس کو سینے سے لگانے کے مرادف ہے۔ وَعْتَصِمُوا مضبوطی سے پکڑو حبل اللہ یعنی اللہ کی رسی، مراد قرآن کریم ہے، مضبوطی سے تھامنے سے مراد اس پر پوری طرح اور 100% عمل کرنا ہے، یقین کے ساتھ عمل کرتے رہو۔ ولا تفرقو تمہارے اندر تفرق ختم ہو جائے گا، اتحاد آ جائے گا۔ وقت 1:30 کا دیا گیا ہے اور شعر پر میں اپنی بات ختم کرنا چاہتا ہوں کہ ہماری بیماریوں کا اور ہماری مذلتوں کا اور ہماری بستیوں کا علاج اللہ نے قرآن کریم میں رکھا ہے، اللہ کرے کہ ادھر بھی ایک نظر ہماری ہو جائے تو پھر اللہ تعالیٰ جو ہے دوبارہ چاندنا اور اتحاد عطا فرما سکتے ہیں۔ تو ہی نادان چند گلیوں پر قناعت کر گیا، ورنہ گلشن میں علاج تنگی دامہ بھی ہے. واخر دعوانا الحمدللہ.